यहूदा ने साफ साफ एक पद से लेकर 16 पद तक ये भक्तिहीन ये गलत शिक्षकों का स्वरूप के बारे में, गलत शिक्षकों का इतिहास में क्या हुआ इनके साथ उसके बारे में और इनकी चरित्र के बारे में साफ साफ इन्होंने लिखा, ये लोग कैसा है। कुछ समय ये लोग विश्वास में चलते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं और बाहरी ओर से लगता है कि हाँ ये तो अच्छा विश्वासी है, बट सच्चाई में वे लोग वैसा नहीं है। वो लोग कलीसिया को छोड़ देते हैं, कभी कभी कलीसिया का महत्व को नहीं जानते हैं। कलीसिया ऐसा हो कि एक आम बात हो गया, संगति एक आम बात हो गया, आत्मिक जीवन एक आम बात। इनकी जीवन ऐसा जिस रीति से आत्मिक उन्नति होना चाहिए वो आत्मिक उन्नति नहीं दिखाए। इन सारे समस्याओं के बीच में हम लोग प्रश्न पूछ सकते, कैसे हम लोग इस झूठे शिक्षकों से बच सकते हैं, कैसे इस कलीसिया को बचा सकते हैं, नहीं तो कैसे अगर मान लीजिए कलीसिया में जो नया लोग आ रहे हैं उनको कैसे हम बचा सकते गलत शिक्षकों। तो बार बार यहूदा यही बात याद दिला रहा, पौलुस का उनकी जीवन समाप्त हो रहा था, उस उन्होंने तिमोथियस को बोला, तिमोथियस एक दिन आखिरी में ऐसा लोग आएंगे जरूर, तो जब ऐसा लोग आएंगे हम उसके कैसे बच के रहेंगे हम लोग। तो उसके लिए यहूदा साफ साफ कहते हैं स्मरण रखो, अगर 17 पद में हम लोग देखेंगे, तुम उन बातों का अवश्य स्मरण रखो, नहीं तो क्या दूसरी याद रखना, इन बातों को याद रखना। सिर्फ याद ही नहीं है, आगे चल के कहते हैं कि 20 पद से उसमें बने रहो, इसमें बने रहो, एक तो याद रखो उसके बाद बने रहो, और उसके बाद तीसरा दूसरों को भी बचाओ। जो बातें जो प्रेरित ने पहले से कह चुके हैं इन बातों को तुम याद रखो। सिर्फ याद रखना नहीं है, जो बातें आप लोग ने सुना है वचन से जो बातें सुना है उस पर बने रहो और दूसरों को भी बचाओ। पूरा 17 पद से लेकर 23 पद तक यहूदा हम लोग को याद दिला रहा है। क्यों 17 पद में बार बार ये 17 सिर्फ 17 पद नहीं है, 5 पद में भी यहूदा कहते हैं कि ये बातों को तुम तो जानते हो, फिर भी मैं याद दिलाना चाह रहा, आप लोग तो पहले से सुन चुका है ये बात, परमेश्वर ने जो काम किया है वो काम को आप लोग ने देख चुका, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। क्यों बार बार याद दिला रहा? ताकि ऐसा मान लीजिए अगर हमारा कलीसिया में कभी ऐसा हुआ झूठा शिक्षकों के साथ, हम लोग अचानक से ये नहीं करेंगे अरे ऐसा हुआ, हम तो सोचे भैया ये विश्वासी है, हम तो सोचे इसका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, क्या इन्होंने ऐसा किया। यही बात पहले हुआ था, अभी भी हो रहा है, आने वाले दिनों में होगा। इसलिए ये बात सिर्फ यहूदा नहीं है, पत्रस भी याद दिला। अगर दूसरा पत्रस आप लोग पढ़ेंगे, पत्रस भी कहता है मैं इस बात को स्मरण दिलाऊंगा, जब तक मेरा प्राण है इस बात को मैं स्मरण दिलाऊंगा। क्यों वो स्मरण दिलाना चाहते, ताकि हम सावधान रहें। जैसा हम छोटे बच्चों को हम लोग कितना बार हम लोग याद दिलाते, अच्छा इसको मत छूना, ये काम मत करो, हम कितना बार याद दिलाते हैं हम लोग। क्यों एक बार बस बोल देते, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नहीं तो ये टीवी मत छूना, ये मत करो। क्यों साल में एक बार अगर बोल दे तो कैसा रहेगा। क्यों हम लोग हर एक दिन हमारे बच्चों को हर एक दिन वही बात याद दिलाना पड़ता। कभी कभी लगता है कि अरे ये तो नहीं है, यहूदा बहुत बार बहुत ज्यादा बोल रहा है गलत शिक्षकों के बारे में, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात, इसलिए वो याद दिला रहा है, इसलिए वो याद दिला रहा है। इवन 17 पद में भी जो कहते हैं कि पर हे प्रियो तुम उन बातों का अवश्य स्मरण रखो जिन्होंने हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। कौन है प्रेरित, किस बातों की इन्होंने कह चुका है? अगर आप लोग देखेंगे मत्तै 24 अध्याय, उधर में भी गलत शिक्षकों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सिर्फ उतना नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उधर में पौलुस बार बार इन लोग को याद दिला रहा है ये गलत शिक्षक लोग आएंगे एक दिन। कोलोसियों में भी पौलुस कह रहे हैं कि ये लोग खाना को लेकर अलग अलग बातों को गलत शिक्षक लोग कलीसिया के सामने रखेंगे। फिर उतना पहले तेसलोनिको, दूसरा तेसलोनिको, उसमें भी जो मसीह का विरुद्ध करने वाला एक दिन खड़े होंगे। पहला तिमोथियस 4 अध्याय, उसमें भी लोग अलग अलग गलत सिद्धांतों को सिखाएंगे। आज भी ये गलत सिद्धांत हम लोग संसार में देखते हुए आ रहे हैं, और बहुत से लोग इवन इधर से भी कुछ लोग उस गलत शिक्षाओं में चला गया। पत्रस भी कह रहे हैं ये गलत शिक्षक लोग हमारा बीच में है। ये कैसा गलत शिक्षक लोग है? ये लोग ऐसा नहीं कि आके आप लोग को कोई नया बात बताए, कभी कभी हो सकता है आपको कुछ नया बात बताएंगे, पर अपना जीवन में जो वचन का, जो परमेश्वर का स्थान देना चाहिए, वो स्थान नहीं है इनकी जीवन में। जिस रीति से परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करना चाहिए, पवित्रता में बढ़ना चाहिए, वो इनकी जीवन में हम लोग नहीं देंगे। जब हम लोग बात करते हैं बहुत आराम से हंस के बात करेंगे हम लोग से, भैया आप लोग कैसा है, क्या देखा, कौन सा मूवी देखा, कहाँ गया, ये सारे बात करेंगे। जब आत्मिक बात करते हैं हम, इनके पास कोई उसके लिए रुचि नहीं, इसके जीवन में कोई परमेश्वर का काम है नहीं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 19 पद में, वे लोग तो हमारा, हमसे तो गया, ये लोग हमें होके गया, परंतु वो लोग हमारा साथ में नहीं है। यदि अगर हमारा साथ है तो वो लोग हमारा पास रुकेंगे, हमारा कलीसिया में रुकेंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हाँ अरे मैं कलीसिया से बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा वैसा, बट कलीसिया के, कलीसिया में रहते हुए कलीसिया के लोगों के साथ संगति करना उन लोग के लिए अच्छा नहीं लगता, गलत शिक्षकों का। इसलिए यहूदा इन लोग को याद, जो पहले जो प्रेरित ने कहा उन बातों को जरूर स्मरण रखो। सो इन्हें बातें पूरा नया नियम में, अगर आप लोग देखेंगे पूरा नया नियम में इन बातों को साफ 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 प्रेरित ने कहा। और सिर्फ उतना ही नहीं है, 18 पद में उनके अंतिम दिनों में, अंतिम दिन क्या होता है, अंतिम दिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया, फिर वो दोबारा फिर आएंगे वापस, हम लोग अंतिम दिन में हैं। सो अंतिम दिन उस समय से शुरू हो गया। अगर आप लोग पहला तस्लोनिको दूसरा तस्लोनिको पढ़ेंगे तो उसमें भी लोग टट्टा उड़ाएंगे, क्या ये अंतिम दिन कब आएगा, ये तो हम लोग बहुत सालों से सुन चुके हैं। बट पॉलिस कहते हैं कि वो दिन हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बट प्रभु आएगा एक दिन ना, एक जैसा चोर की जैसा एक दिन आएगा। चोर तो बता के नहीं आएंगे, अरे आपके घर में मैं चोरी करने आ रहा हूं करके, अचानक से प्रभु आएगा। उस दिन के लिए हम लोग को जरूर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गलत शिक्षक लोग के उस अंतिम दिन के लिए भी क्यों इन लोग का कोई डर नहीं है, नहीं तो कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि प्रभु एक दिन न्याय करेगा। उस अंतिम दिन प्रभु सबका न्याय करेगा। जब वो न्याय करेगा, हमारा सारे पापों का हिसाब मांग, हमारे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। इन लोग का अंदर कोई वो डर नहीं है, कोई उस न्याय का डर नहीं है। तो वैसे ही 19 पद में ये लोग ठट्ठा करने वाला है और ये फोट डालने वाला है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, ना शरीर और आत्मा रहित है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनकी अंदर कोई प्रभु का काम हुआ नहीं है। ये लोग सिर्फ यही नहीं, कलीसिया को तोड़ डाल, कोई अगर काम करते हैं हम लोग, अगर कोई काम करते हैं, वचन पर आधार होना चाहिए, विशेष रीति से जो भी आत्मिक काम है, अगर हम ये निर्णय लेना चाह रहे हैं वो वचन पर आधार होना चाहिए, वचन का अनुसार करना चाहिए। पर ये झूठे शिक्षक लोग क्या करते हैं, कलीसिया को भी तोड़ेंगे। चलो अगर मेरे इच्छा पूरी करना चाहते हैं, मेरे पीछे चलो, उनकी काम वही है। ये लोग अधिकार को भी मानेंगे नहीं, ये गलत शिक्षक लोग, इनकी जो असलियत वो है। और इनकी जीवन का अपना रूल्स अलग होता है, मैं अपना हिसाब से चलूंगा, परमेश्वर का वचन का हिसाब से मैं नहीं चलूंगा करके। सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप इन बातों को स्मरण करो, इन बातों को याद रखो, जीवन व्यतीत करो। फिर आगे से वो कह रहा है कि फिर 20 पद में, हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में खटकर पवित्र आत्मा के प्रार्थना करते रहो। और किस बात के लिए फिर याद दिला रहे हैं, एक तो कह रहे हैं जो प्रेरित लोग पहले से बोल चुका है उन बातों को याद करते हुए आप जीवन व्यतीत करो, और 20 पद से कह रहे हैं कि इन बातों पर बढ़ते जाओ। किन बातों पर, उस पवित्र विश्वास पर। एक विश्वासी होते नाते एक तो है प्रभु हम लोग को बचाना। प्रभु कैसे बचाएंगे, जब आप पहली बार सुसमाचार को जब आप लोग ने सुना है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर, हमारा हृदय के अंदर घायल कर, पवित्र आत्मा घायल करने के बाद क्या होता है, धीरे 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 हम लोग उस पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। पवित्रीकरण, इसको बोलता पवित्रीकरण। एक तो परमेश्वर हमको धर्मी ठहराना, हमारा हृदय को बदला है, बदलने के बाद प्रभु हमारा जीवन में लगातार लगातार दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा वो काम करता। जब अगर वो काम होता है, हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में हम बढ़ते जाएंगे। एक विश्वासी का वो एक चिन्ह है पवित्र जीवन में बढ़ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, कलीसिया को नहीं बचा पाएंगे, और इवन जो पारिवारिक रीति से परिवारों को भी गलत शिक्षाओं से हम लोग नहीं बचा पाएंगे। सो इसलिए ये याद दिला रहे कि तुम उस अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। हमारा आत्मिक उन्नति और हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। सिर्फ आप ये मत कहिए कि अच्छा एक बार परमेश्वर ने हमको बचा लिया, बस हो गया मेरा काम, और हमारा पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा मैं पवित्रता में बढ़ूं कि ना बढ़ूं, वो बात नहीं है। पवित्रता में बढ़ना है, पवित्रता में हम लोग को बढ़ना ही है। सो इसलिए यहूदा कह रहा कि उस अति पवित्र विश्वास में आप लोग बढ़ते जाइए करके। सो ये पवित्रता में हम लोग, विश्वास में हम लोग कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, सिर्फ एक बार नहीं है, दिन प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उस वचन को जीवन में लागू करना। अच्छा परमेश्वर का वचन ये है, मेरे जीवन ऐसा चलाना चाहिए, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कुछ लोग पढ़ते तो है वचन, वैसे तायतुस में लिखा, कुछ लोग ऐसा लोग हैं, देखते तो हैं ये लोग, मतलब दिखाने के लिए तो लग रहा है कि ये लोग वचन पढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये लोग अरे ये तो हर हफ्ते आ रहा चर्च में, बुधवार को बाइबल स्टडी में आ रहा है, और भाई लोगों को संगति में आके वचन भी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बाहरी रीति से वैसा दिखते हैं, बट सचमुच में उनकी अंदर बढ़ोतरी नहीं हो, क्योंकि प्रभु का काम नहीं हुआ। और इफिसियों चार अध्याय 11 पद में भी इसलिए हमारा उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रेरित को दिया, कुछ पासवानों को दिया, अलग अलग लोगों को कलीसिया में शिक्षा देने के लिए दिया। क्यों? ताकि हमारा आत्मिक उन्नति हो जाए। उसी कारण से अगर हो सकता है तो हम लोग उत्पत्ति से एक हफ्ते उत्पत्ति से प्रचार कर सकते हैं, दूसरा हफ्ते मरकुस से प्रचार कर सकते हैं, हम लोग अगर चाहते तो कर सकते हैं। बहुत से कलीसिया में ऐसा हो रहा है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पुस्तक को लेकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ताकि हमारा पास पूरा बाइबल एक कहानी है, हम समझ सके और इसके जीवन में हम लोग लागूकरण कर सके। तो इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो आप लोग से भी मैं अनुरोध करूंगा, जब वचन का प्रचार होता है, जरूर अवश्य जो कुछ भी वचन का प्रचार कर, आप जरूर प्रार्थना करिए, प्रभु आप इनको बुद्धि समझ दीजिए, ताकि ये जो वचन का सेवा कर रहा है वे लोग अच्छी रीति से हम लोग को वचन समझाएं। आप लोग हम लोग के लिए दुआ करें। इसलिए हम लोग लगातार मेहनत करके हम पुस्तक के बाद पुस्तक हम लोग प्रचार करते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ पूरा नया नियम में बार बार वचन याद दिलाते हैं, हम वचन पढ़ना चाहिए। आप लोग को याद होगा ना, हम लोग ने एक सर्वे लिया था, आप लोग मतलब कितना दिन वचन पढ़ते हैं कर। अच्छा आप लोग सच्चाई से आप लोग ने बताया, कभी कभी लोग हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं, कभी हफ्ते में 3 दिन पढ़ते हैं। अच्छा रहेगा हम वचन परमेश्वर के लिए, आप अपने दिन को एक बार जांचिए, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, नहीं तो रात में 10 बजे तक आप जांचिए, एक बार मोड़ के देखिए, मैं प्रभु के लिए कितना समय निकाल कर प्रभु के साथ मैंने समय व्यतीत किया, कितना समय मैंने प्रार्थना किया, कितना समय मैंने परमेश्वर के साथ मैंने बातचीत किया, कितना समय मैंने वचन को समझने में व्यतीत किया। नहीं तो समय गुजरते जाएगा। हम कभी भी आत्मिक रीति से जैसा बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ नहीं पाते। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं ना कलीसिया का महत्व, हम लोग के लिए कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग लोगों को फोन करते हैं, भैया संडे को आप लोग क्यों नहीं आया, नहीं तो बुधवार बाइबल स्टडी में क्यों नहीं आया, क्यों? हम लोग चिंता करते हैं आपके आत्मिक जीवन के लिए। ये मत सोचेगा अरे ये लोग हमारा पीछे पड़े हैं करके। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है हम सब लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन में हम लोग बढ़ते जाएं। सिर्फ इतना नहीं है, वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आगे चलकर कह रहा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कुछ लोग अचानक से कहते हैं कि अच्छा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब ये कि अन्य भाषा बोलना है करके। जब तक अन्य भाषा नहीं बोलेंगे हम लोग पवित्र आत्मा में हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। इधर वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रहा, अगर रोमियो का 8:24 आप लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग कमजोर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर, जब हम लोग कमजोर हैं पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। सो वो बात हो रहा है, सिर्फ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर। कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ उतना आगे आप लोग 24 पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को क्या प्रार्थना करना चाहिए हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग किसी से पूछेंगे भैया आप लोग के लिए कोई प्रार्थना का विषय है, ये लोग ऐसा कोई नहीं है प्रार्थना का विषय, सब ठीक है। कभी कभी हम लोग नहीं जानते हम लोग क्या प्रार्थना, हाँ ये जानते जरूर हमको पवित्रता में बढ़ना चाहिए, पाप से दूर भागना चाहिए करके, और ये भी जानते हैं कि जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा जीवन व्यतीत करूं, तो ये सब का जानकारी है। और कभी कभी हम लोग को ये नहीं मालूम है आगे के लिए हम लोग क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इधर कह रहे थे पवित्र आत्मा के इच्छा में होकर प्रार्थना करो। सो वो इच्छा क्या है हम लोग कभी कभी नहीं जानते, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और सिर्फ हम लोग नहीं है, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि पिता पवित्र आत्मा को समझते, पुत्र पवित्र आत्मा पिता को समझते। सो ये तीनों हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और विशेष रीति से यीशु मसीह हमारा याजक बन गया, हमारा याजक। देखिए पहले पुराने नियम में क्या होता था, लोग जाके अपना पापों के लिए बलिदान चढ़ाता, वो याजक होता था, उसका थ्रू वो लोग बलिदान चढ़ाते। बट नया नियम प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आ गया, आकर वो एक पवित्र जीवन जिया, जीवन जीकर हमारा पापों के लिए और वो हमारा मध्यस्थ बन गए, ताकि हम दोबारा वापस जाके बलिदान ना चढ़ाएं, बट हमारा पापों को पश्चाताप कर उस प्रभु पर, उस प्रभु जिन्हें उन्होंने अपना जीवन दे दिया उस क्रूस पर और उसका पुनरुद्धान पर हम विश्वास कर सके, पुत्र के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सके, पिता के साथ हमारा संगति हो जाए। इसलिए पुत्र आ गया और आकर हमारा मध्यस्थ बन गया। जब एक दिन हम लोग बार बार दुआ कर रहे ना, एक दिन प्रभु हम आपको सामने हम लोग देखेंगे, वो जगह तैयारी कर रहा है हमारे लिए स्वर्ग में। इससे बढ़कर हम लोग के लिए क्या चाहिए, प्रभु हमारा मध्यस्थ बनकर हमारे लिए, हमारा आत्मिक जीवन के लिए प्रभु दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने का मतलब ये है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह का नाम पे अपने को परमेश्वर का प्रेम में बने रखो। सिर्फ आगे चल के कह रहे कि अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बने रखो। क्यों कह रहे कि अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बने रखो, तो एक तो कह रहे हैं कि जो प्रेरित ने पहले से जो बताया उनको जरूर याद करो, फिर कह रहे हैं कि पवित्र विश्वास में बने रहो और परमेश्वर का प्रेम में बने रहो। रोमियो का 8 आगे आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को कोई भी परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता, बट इधर वचन कह रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम में बने रखो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, अगर यूहन्ना 15:9-10 आप लोग पढ़ेंगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैंने प्रेम किया, आप उसी प्रेम पर बने रहो, उस प्रेम पर बने रहो। कैसा बने रहेंगे, अगर प्रभु और सचमुच में हम उस पिता का प्रेम में बने रहेंगे, तो जो आज्ञा है परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो वचन है, उसके अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। बट सबसे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम में बने रहना मतलब आज्ञाकारी बनकर रहना। अगर परमेश्वर का आज्ञाकारी, जितना हम लोग वचन पढ़ते हैं, जितना वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर हम लोग रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। नहीं है तो उसी रोमियो 12 अध्याय में साफ साफ लिखा, परमेश्वर अनुशासन करता। किस लिए परमेश्वर अनुशासन करता? हमारा अच्छा के लिए, हमारा भलाई के लिए परमेश्वर अनुशासन करता। अगर हम लोग परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर नहीं रह रहे, परमेश्वर का एक दिन न्याय का सामना भी करना पड़ेगा, और जब परमेश्वर अनुशासन करेगा उसका भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अवश्य है परमेश्वर के पीछे लगातार लगातार हम लोग को चलना चाहिए। और 21 पद में और कह रहा है कि सिर्फ वैसा ही नहीं है, और अनंत जीवन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आशा देखते रहो, उस आशा के लिए इंतजार करो। किस आशा के लिए बार बार फिर याद दिला रहा है? एक दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। उसका मृत्यु हो गया, पुनरुत्थान के बाद पुत्र ने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अनंत आशा दिया। तो उस आशा के लिए हम सब लोगों को बहुत उत्साह से इंतजार करना चाहिए। ये वायरस कुछ नहीं करेगा, वायरस आएगा जाएगा। हम लोग कुछ भाई लोग से बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ताकि हम सब लोग प्रभु के साथ रहेगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि हम लोग एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग आमने सामने देखेंगे, अगर ये बात सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, शाबाश, चाहे वो मेरा बेटा और बेटी, बहुत ऐसा आपने जीवन व्यतीत किया, मैं जैसा चाहता हूँ आपने जीवन ऐसा व्यतीत। इसलिए जब परमेश्वर ने ये जीवन दिया, हम लोग को इस जीवन से खेलना नहीं, उसके भय में होकर हम लोग इस जीवन व्यतीत करना चाहिए। और 22 पद, जो संदेश करता है उन पर दया करो। किस लिए? बहुत लोग तो इस कलीसिया में आ रहा है। उस समय भी बहुत से लोग जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते थे, बहुत से लोग प्रभु के पीछे चलते। बट बाइबल इतना, मतलब परमेश्वर का वचन इतना सच्चाई है, बहुत लोग से पीछे आया बट कुछ लोग ने विश्वास किया। इधर भी फिर से याद, हम लोग को याद दिला रहे हैं, जो लोग संदेह करो उस पर दया करो। क्यों ये कह रहे हैं? ये लोग ऐसा लोग है, कलीसिया में आ रहा है, शुभ संदेश कई सालों से, कई महीनों से ये लोग शुभ संदेश को सुन रहे, बट फिर भी उसके आंखें खोलने रहे। हम लोगों को दया दिखाना चाहिए, जो लोग संदेश करो उसके प्रति दया दिखाना चाहिए, ताकि वे लोग भी शुभ संदेश को सुनकर प्रभु के पीछे वे लोग भी चल सके। तो आप लोग तो कहते हैं कि नहीं भैया, कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया, ये लोग कलीसिया के लिए बहुत कतरा है, फिर भी इधर कहते हैं कि नहीं, आप उन लोग, ऐसा लोगों पर दया दिखाओ, वो हमारा जिम्मेदारी। कई बार सिर्फ कलीसिया में नहीं है, इवन परिवारों में भी, परिवार आपको लगता है कि नहीं, वो दया के लायक नहीं है, हम कितना बार उसको समझा चुके हैं। अगर वही बात अगर परमेश्वर हमसे कहे, हम सब लोग से कहेंगे, मैंने कितना बार पाप किया फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया, आज भी परमेश्वर दया दिखा रहा, आज भी परमेश्वर हमको सहायता कर रहा है, ताकि हम गिरेंगे पर परमेश्वर के सहायता से उठकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों को सुसमाचार, यह हमारा जिम्मेदारी है, लोगों को शुभ संदेश हम लोग लगातार बताएंगे। क्यों? ताकि उसका आत्मा भी बच जाए। चाहे आप लोग कहीं भी काम करें, चाहे नौकरी, जिधर नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो जिधर स्कूल में आप लोग सिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग कुछ जवान बच्चे हैं स्कूल में, दोस्तों से आप लोग बात कर रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, प्रभु हम, मेरे को ऐसा आत्मा दीजिए ताकि मैं उन पर दया दिखाऊं। 2-3 दिन पहले मैं दुआ कर रहा था, एक महीना हो गया मैं किसी को शुभ संदेश नहीं बताया, एक महीना हो गया, मैं बोला प्रभु क्षमा करो, प्रभु एक महीना हो गया मैं किसी को शुभ संदेश नहीं, मैं इतना भी नहीं बोला मैं मसीह हूं कर, किसी ना किसी को प्रभु मेरे को अवसर दो ताकि मैं दूसरों को सुसमाचार मैं बताऊं। 2 दिन के बाद कुछ सामान खरीदने स्टोर गया था, जो स्टोर में जो काम कर उससे मैं बात कर रहा था, बात करके मैंने पूछा क्या आप चर्च जाते हैं, वैसे ही मैंने पूछा था, तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चर्च तो नहीं जाता हूँ क्योंकि संडे मेरा छुट्टी नहीं मिलता। मेरा पिता है वो विश्वासी नहीं है, पर मेरा मम्मी है वो विश्वासी। और ये उन्होंने ये भी बताया, इधर जो स्टोर चलाते हैं वो भी विश्वासी हैं। तो एटलीस्ट मेरे को ये चला, ठीक है। मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया, लेकिन मैंने बोला ठीक है मैं आपको फ़ोन करूँगा, तब आपसे मुलाकात। जो काम कर रहे हैं हम लोग, कभी कभी हम लोग काम में बहुत व्यस्त हो जाते, पर हमारा अंदर हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु जो लोग संदेह कर रहे हैं मैं उन पर दया दिखाऊं, उनको भी उनके आत्मा को बचा लें। बट ये याद रखिएगा, हम सिर्फ शुभ संदेश लोगों को बता सकते हैं। इधर यहूदा कोई दूसरा बात नहीं बोल रहा, यहूदा का कहना यह है हम दया दिखाएंगे, परमेश्वर का शुभ संदेश को लोगों को बताएंगे, परमेश्वर जीवनों को बदलता है, हृदय को बदलने वाला परमेश्वर। सिर्फ एक ही वो परमेश्वर है, वो ही हृदय को बदलता है, और कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हम लगातार लोगों को सुसमाचार बताएंगे। और 23 पद में भी वो कहते हैं कि आग में से झपट कर निकालो। 23 पद में कह रहे हैं कि ये लोग थोड़ा कठिन लोग, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इनके साथ बिल्कुल संगति करो, और इनकी जीवन ऑलरेडी आग में है। वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुतों को आग में से झपट के निकालो। मतलब क्या हम लोग जाएंगे, हमारा हाथ आग में लगा के लोगों को निकालेंगे? बात यही हो रहा है, विश्वास के साथ हम विश्वास के साथ इन लोग के पास जाएंगे जो लोग विश्वास नहीं कर रहा, जो लोग विश्वास नहीं कर रहा। हो सकता है कि इनकी जो विश्वास है ना, परमेश्वर का विश्वास अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और ये लोग हो सकते हैं, अरे ठीक है बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से देवी देवता हैं, क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें? हम प्रभु यीशु मसीह को भी मानेंगे, हम अलग अलग देवी देवताओं के पीछे भी हम लोग मैं चलूंगा। इनका विश्वास हो सकता वो है, और इनके विश्वास ऐसा हो सकता है कि अच्छा कर्मों के द्वारा हम उद्धार पा सके, अच्छा कर्मों के द्वारा हम उद्धार पा सके। पर हम लोग क्या हमारा अच्छा कामों के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं? हमारा अच्छा काम मेले चित्रों के समान, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए उद्धारकर्ता का जरूरत है। इसलिए जो स्वयं परमेश्वर संपूर्ण रीति परमेश्वर, वो संपूर्ण रीति से मनुष्य बनकर आ गया, आकर अपना जीवन उस क्रूस पर दे दिया, ताकि सिर्फ हम हमारा अच्छा कामों से नहीं है, नहीं तो हम हजार देवी देवता उनका पीछे हम लोग नहीं चलेंगे। सिर्फ ये उद्धार करता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऐसा योजना बनाया मनुष्य के लिए, ताकि हम उस सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को सच्चा दिल से, पूरा दिल से जान जाए। बट ये काम प्रभु को करना चाहिए। बट प्रभु हमको और आपको जिम्मेदारी दिया, ताकि जो लोग आग में उनको भी हम सुसमाचार हम बता सकें। पर आखिरी में ये वस्त्र के बारे में, उस वस्त्र ऐसा वस्त्र से भी घृणा करो करके कह रहे, इसका मतलब क्या है? हम लोग को बहुत डरते हुए वो डर किसकी डर होनी? परमेश्वर का डर होना चाहिए हमारे जीवन में। नहीं तो क्या होगा, वे लोग जो पाप में हैं, जो लोग ऑलरेडी आग में हैं, उस आग में हम लोग भी फंस जाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा वस्त्र से घृणा करो। उदाहरण के लिए कोई गंदे कपड़े अपना घर में रखा है, नहीं तो सड़क में फेंक दिया, आप लोग ये नहीं चाहते ना वो गंदे कपड़े को लो और उसके बाद आपका ताली में रखो और जाओ, आप लोग चाहते हैं वो सबसे बेकार कपड़ा है। इसलिए कह रहे इधर, ऐसा लोगों से बहुत सावधान रहो, अपना जीवन के बच के रहो, और साथ ही साथ उनको सुसमाचार बताओ। आमोस 4 अध्याय बहन ने पढ़ी हमारे लिए, उधर भी जब पुराने नियम में देखेंगे, परमेश्वर ने इसराइलों को छुड़ाया, उन्होंने बचाया, कितना बार परमेश्वर ने ऐसा किया, फिर भी वो लोग परमेश्वर को नहीं माना। इसलिए इधर यहूदा हम लोग को याद दिला रहे हैं, वे लोग ऐसा लोग हैं, इनसे बहुत सावधान रहो, ताकि तुम भी उस पाप में ना फंसे और परमेश्वर से दूर हो जाए। बार बार यहूदा यही बात याद दिला रहा है। स्मरण रखो किस बात की? जो प्रेरित ने बताया पहले से, उन बातों को स्मरण रखो। सिर्फ वही नहीं है, स्मरण रखना ही नहीं है, आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहो, उस पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। सिर्फ वही नहीं, इन लोग जो लोग जिसकी आग में से निकालने के लिए बोल रहे, वे लोग कहते हैं जब उनसे बात करेंगे हम, वो उन लोग का कहना है, अरे हम तो सब जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप मेरे को बोलने की कोई जरूरत तो है नहीं, मैं तो ये बात है भैया मैं पढ़ चुका हूँ। कितना लोग, हम बहुत से बार लोगों से बातचीत करते हैं, क्रिसमस के समय भी बहुत लोग इधर आए थे, बोले कि भैया मैं बाइबल भी पढ़ चुका हूँ, मैं वो पुस्तक भी पढ़ चुका हूँ, दूसरा पुस्तक पढ़, सब कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, मैं इसमें कुछ है नहीं है। पर ऐसा लोगों के प्रति हम दया दिखाना चाहिए, हम याद दिलाना चाहिए इन लोग को शुभ संदेश के बारे में याद दिलाना चाहिए। कई बातें इधर यहूदा याद दिला रहा है हम लोग को। पहली बात, उस पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। हम पवित्र विश्वास में हम लोग कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर का वचन को मनन करने के द्वारा। हम नाम के वास्ते हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। याद रखिए, हम उस आखिरी दिन के लिए हमारी तैयारी हो रही है। जब अभी से हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, उस आखिरी दिन भयानक होगा हमारे लिए। हम ये नहीं कह सकते मैं तो एक बार विश्वास कर लिया, प्रभु तुरंत मैं स्वर्ग में मेरे को आने दीजिए प्रभु, ऐसा नहीं कह सकते। उस दिन के लिए अभी से, आज से हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लगातार पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए प्रभु का इच्छा के अनुसार। हमारे इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है, पर अच्छी बात है अगर यदि हमारे इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ साथ चलता। जरूर मांगिए, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, हमारे इच्छाओं को पूरी करता परमेश्वर। पर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बने रखें, मतलब परमेश्वर का अधीनता में होते हुए हमारा जीवन व्यतीत करें। आपके दिमाग में मतलब ये बात बैठ जाना चाहिए, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी पाप का ऐसा सोच अगर हमारा दिमाग में, हृदय में अगर ऐसा आता, तुरंत हमको याद, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर पाप से घेर ना करने वाला परमेश्वर, मैं परमेश्वर का बात को मान के चलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, पाप से दूर रहो, पाप से घेर ना करो। इसलिए हमारा दिमाग में, इवन हम बोलने से पहले भी, हम किसी बात करने से पहले भी ये बात है, क्या जो मैं जो बात जो बोल रहा हूं मैं, क्या ये जो बात दूसरों के निर्माण के लिए हो रहा है, नहीं तो दूसरों को नुकसान के लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत आम बात है। परमेश्वर से मोड़ कर हम लोग पाप में फंसते जाएंगे, चाहे वो घर में जब हम लोग बच्चे से बातचीत करते उस समय, परिवारों के बीच में, मित्रों के बीच में, हमारा बोलचाल और नहीं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर में प्रेम में होते हुए वो होना चाहिए। और आखिरी बात, अनंत आशा। अगर सचमुच में उस दिन के लिए उस आशा, अगर हाँ नहीं एक दिन तो मैं परमेश्वर को देखूंगा, अगर सचमुच में अगर मैं हमारा हृदय में वो बात उसके लिए हम सोचते हैं, हमारा हृदय को दिन प्रतिदिन हमारा हृदय साफ होते जाएगा, परमेश्वर हमको पवित्र करते जाएंगे। क्यों? हमारा आशा क्या है? एक दिन हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, इस संसार को छोड़कर, इस संसार के चीजों को छोड़कर हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए हम उसके साथ हम समय व्यतीत करेंगे, उसके साथ हम संगति करेंगे। अगर हो सकता है आप पहली बार इस कलीसिया में आया, नहीं तो हो सकता आप लोग कई सालों से इस कलीसिया में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है भैया हमको चर्च में आने में, लोगों से मिलने में, बातचीत करने में। क्या आप अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया? क्या आप निर्णय लिया, मैं मेरे पाप से पश्चाताप कर संपूर्ण दिल से मैं प्रभु के पीछे चलूंगा? परमेश्वर दयालु परमेश्वर, परमेश्वर लोगों को बचाता है, आग से बचाता है, उसका डर होना चाहिए हमारा। आइए हम प्रार्थना।